पाठ चार अध्याय दो लैव्य व्यवस्था। अध्याय एक में हमने इब्रानी में बलिदान अनुष्ठान के आह्वान को देखा, ओलाह, जिसे हम आम तौर पर होम बलि के रूप में अनुवाद करते हैं, और हमने देखा कि यह बलिदान बैलों से लेकर भैरों पक्षियों तक सभी जानवरों को जलाने से संबंधित था, और यह जलना पूरा होना था, कुछ भी नहीं रहना। अध्याय दो में हमें दूसरे प्रकार की भेंट मिलती है और यह भी एक तरह की होम बलि होगी, इस अर्थ में कि इसे पीतल की वेदी पर जलाया जाएगा, लेकिन यह बलिदान जानवरों या खून की भेंट नहीं है बल्कि पौधों की बलि है। विशेष रूप से यह अनाज है, और भी अधिक विशेष रूप से यह सूजी है जो अनाज का सबसे अच्छा हिस्सा है। अगले कुछ हफ्तों में हम अपने अध्ययन में सामान्य से ज्यादा तकनीकी होने जा रहे हैं, क्योंकि हम विभिन्न बलिदानों के बारे में जानेंगे। यह सिर्फ बुद्धिजीवियों और रब्बियों के लिए सीखने के लिए नहीं है। विभिन्न प्रकार के बलिदानों के विभिन्न उद्देश्य होते हैं, क्योंकि पाप और प्रायश्चित उतने सरल और साफ सुथरे नहीं हैं जितना हमने उन्हें बनाया है। यह एक बहुत बड़ा अपमान है जो एक चर्च द्वारा किया जाता है, जो आम लोगों के लिए सब कुछ सरल बनाने के लिए बहुत उत्सुक है, जहां हमें इस तरह के सरल विचार मिलते हैं कि पाप पाप है, और परमेश्वर न तो उन्हें वर्गीकृत करते हैं और न ही उन्हें ग्रेड देते हैं। मूल रूप से एक कैंडी बार चुराना परमेश्वर की नजर में सशस्त्र बैंक डकैती से अलग नहीं है। हालांकि जब तक हम लैव्य व्यवस्था के साथ समाप्त हो जाते हैं, तब तक पाप और मोचन की भयानक और बहुस्तरीय और बहुआयामी प्रकृति बहुत अधिक स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको अपना सर्वश्रेष्ठ समय और ध्यान देने के लिए बलिदान की आवश्यकता होगी, क्योंकि यदि आप थोड़ा सो जाते हैं तो यह आपके पास से गुजर जाएगा और आप इसके सभी गहरे आध्यात्मिक महत्व को समझने से चूक जाएंगे। अपनी बाइबल में लैव्य व्यवस्था अध्याय दो खोलें। लैव्य व्यवस्था अध्याय दो, पूरा पढ़ें। मैंने पिछले सप्ताह बताया था कि ओलाह पशु की होम बलि अक्सर अन्य प्रकार की बलि के साथ मिलकर चढ़ाई जाती थी। वास्तव में जहां तक अभिलेखों से पता चलता है, मंदिर में प्रतिदिन की होम बलि हमेशा बलि के साथ चढ़ाई जाती थी, जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। अनाज की बलि दोनों को लगभग हमेशा एक जोड़ी के रूप में चढ़ाया जाता था। अब जैसे ओलाह लैव्य व्यवस्था के अध्याय एक में वर्णित पशु की होम बलि के लिए विशिष्ट इब्रानी नाम है, अध्याय दो में बलिदान की भेंटम मूल इब्रानी में मिंचाह कहलाती है। अक्सर बाइबल इस प्रकार की भेंट का अनुवाद भोजन शब्द में करती है, इसे भोजन की भेंट बनाती है, और यह सही है, सिवाय इसके कि हमारी 21वीं सदी की दुनिया में भोजन का अर्थ अक्सर नाश्ता, दोपहर का भोजन या रात का खाना होता है। बहुत समय पहले तक भोजन शब्द का अक्सर उल्लेख किया जाता था पिसे हुए अनाज में, जैसे मकई के आटे में, जो यहां संदर्भ है। हालांकि चीजों को थोड़ा और भ्रमित करने के लिए कुछ बाइबल अनुवादों ने इस भेंट का वर्णन करने के लिए मांस शब्द का उपयोग किया है। किंग याकूब वर्जन ऐसा करता है और कोई भी निश्चित नहीं है कि ऐसा क्यों किया गया था। यही है किंग याकूब वर्जन और किंग याकूब वर्जन पर आधारित कुछ अनुवाद अनाज की भेंट को मांस की भेंट कहते हैं, भले ही यह विशेष रूप से अनाज की भेंट है और किसी भी तरह के जानवर के मांस की नहीं। मुझे संदेह है कि इसका कारण कैन और एबल के बीच परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के विवाद की कहानी में सामने आने वाली शब्द अनुवाद समस्या को हल करना है, जिसके कारण अंततः कैन के हाथों एबल की मृत्यु हो गई। मैं बस एक पल में समझाऊंगा, लेकिन आप में से जिन लोगों ने इसे अध्याय दो में मांस की भेंट के रूप में अनुवादित किया है, वे इसे अपने लिए आसान बनाएं और मांस को काट दें और अनाज लिखें। मांस शब्द का अर्थ आधुनिक विश्व के लिए बिल्कुल गलत है, कम से कम इस संदर्भ में तो नहीं। तो मिंचाह अनाज के सबसे बढ़िया हिस्से सूजी से बनी भेंट है, जिसे फिर पीस कर आटे में बदल दिया जाता है और फिर वेदी पर जलाया जाता है। बढ़िया आटे का सामान्य अनुवाद भी सही नहीं है। यह वह आटा नहीं है जिसे अच्छी तरह से छानकर बढ़िया आटा बनाया गया हो, न ही यह सबसे बढ़िया आटा है, बल्कि यह भेंट अनाज के सिर के सबसे बढ़िया हिस्से से बने आटे की होती है, सूजी।
लेकिन मिंचाह शब्द का एक दिलचस्प इतिहास भी है, क्योंकि यह हमेशा इस अनाज की भेंट को संदर्भित नहीं करता था जिसका हम अभी अध्ययन कर रहे हैं। वास्तव में मिंचाह शब्द उत्पत्ति 4:3-5 में इस्तेमाल किया गया शब्द है, कैन और हाबिल के बीच की घटना के साथ, जब वे दोनों परमेश्वर के लिए एक बलिदान लाए, लेकिन एक स्वीकार्य था और एक अस्वीकार्य था। स्वीकार्य भेंट, स्वीकार्य मिनचाह हाबिल की थी और यह एक जानवर था, अस्वीकार्य कैन की थी और यह पौधे का जीवन था, शायद अनाज। लेकिन दोनों ही मामलों में बलिदान को मिंचाह कहा जाता था। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसके पहले इस्तेमाल में मिंचाह का मतलब सामान्य रूप से बलिदान हो सकता था, न कि किसी खास तरह का बलिदान। यह वाकई विडंबनापूर्ण है ना, क्योंकि उत्पत्ति में परमेश्वर को स्वीकार्य मिंचाह एक जानवर था, परमेश्वर ने अनाज के मिंचाह को अस्वीकार कर दिया। मुझे संदेह है कि इसी बात ने किंग याकूब वर्जन के अनुवादकों को भटका दिया। परमेश्वर उत्पत्ति में अनाज को अस्वीकार करके पशु का मांस कैसे स्वीकार कर सकता है, लेकिन अब लेव्य व्यवस्था में अनाज को स्वीकार करता है, इसलिए उन्होंने समस्या को हल करने के लिए शायद इसे मांस की भेंट कहा। बल्कि कुछ हजार वर्षों की अवधि में हम देखते हैं कि मिंचाह शब्द का उपयोग इस हद तक बदल गया है कि इसका किसी जानवर की भेंट से कोई लेना देना नहीं है और इसके बजाय यह केवल अनाज की भेंट है। वास्तव में यह अनाज की भेंट का विशिष्ट नाम है। अब इस शब्द मिंचाह का इतिहास महान संतों और रब्बियों द्वारा अनाज की भेंट के अर्थ और उद्देश्य के बारे में कही गई बातों से बहुत अच्छी तरह मेल खाता है, अर्थात यह उस चीज अनाज को कम संदर्भित करता है जिसे चढ़ाया जाता है और इसे चढ़ाए जाने के उद्देश्य को अधिक संदर्भित करता है। दूसरे शब्दों में यह इतना नहीं है कि यह अनाज है, बल्कि यह है कि इसका अर्थ श्रद्धांजलि या परमेश्वर को उपहार के रूप में है। इसलिए पहले दो प्रकार के बलिदानों में से जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं, ओलाह और अब मिंचाह, उनके मूल सार का हिस्सा यह है कि वे परमेश्वर को उपहार हैं, लेकिन वे आवश्यक उपहार भी हैं जो श्रद्धांजलि की प्रकृति है। जब हम श्रद्धांजलि शब्द के बारे में सोचते हैं तो ऐतिहासिक रूप से हम विजित लोगों की एक लंबी पंक्ति के बारे में सोचते हैं और यह उस अर्थ के अधिक निकट है जिसे हम लेव्य व्यवस्था में मिंचाह बलिदान के लिए प्रयोग कर रहे हैं। मिंचाह का एक और छोटा सा दिलचस्प पहलू यह है कि इसे अंततः मुख्य रूप से शाम या देर दोपहर में चढ़ाया जाने लगा और परिणाम स्वरूप यह शब्द न केवल अनाज की भेंट को इंगित करता है बल्कि दिन के एक विशिष्ट समय को भी संदर्भित करता है। यदि आप अध्ययन करते हैं मिनवाह शब्द का दुगुना प्रयोग, यहूदी परंपरा में आप पाएंगे कि देर दोपहर की प्रार्थना के समय को मिंचाह या मिंचाह प्रार्थना का समय कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि ये अनुष्ठान प्रार्थनाएं हमेशा देर दोपहर में की जाती है। ओलाह होम बलि के विपरीत मिंचाह अनाज की भेंट वेदी पर जलाने के लिए अनाज का केवल एक छोटा सा हिस्सा चढ़ाती थी, बाकी का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता था। याद रखें कि ओलाह के अनुसार सारा मांस वेदी पर जलाया जाना चाहिए।
बारीक पिसी हुई सूजी और तेल, जैतून का तेल, इस बलि की मुख्य सामग्री थी और इस मिश्रण को कई तरीकों से चढ़ाया जा सकता था, पकाकर या बिना पकाए भी। लेव्य व्यवस्था में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि आटा पकाना है तो उसे ओवन में पकाया जा सकता है, तवे पर पकाया जा सकता है या कड़ाही में पकाया जा सकता है। जब आटे को ओवन में पकाया जाता था तो इसे अलग अलग तरीकों से अलग अलग परिणामों के साथ पूरा किया जा सकता था। और पद 4 में हम देखते हैं कि आटे में तेल मिलाया जा सकता है और इससे एक मोटी गोल केक तैयार होगी। इस परिणाम के लिए यहां इस्तेमाल किया गया इब्रानी शब्द छल्लाह है। अगर आप सप्त को पारंपरिक यहूदी तरीके से मनाना पसंद करते हैं तो आप खुद को छल्लाह की रोटी खरीदते हुए पाएंगे, हालांकि आज यह गोल के बजाय एक रोटी के आकार में है। यहीं से यह शब्द आता है। ओवन में पके हुए आटे के लिए दूसरा परिणाम राखिक कहलाता है, जो पतले कुरकुरे वेफर होते हैं। राखिक के पकने के बाद उसके ऊपर जरूरी तेल फैलाया जाता है, लेकिन दोनों ही मामलों में यह बिना खमीर वाला आटा होना चाहिए, क्योंकि पीतल की वेदी पर कभी भी खमीर वाली कोई भी चीज नहीं जलाई जानी चाहिए।
आइए हम यह भी न भूलें कि पद दो में परमेश्वर ने आदेश दिया है कि लोबान को आटे में मिलाया जाना चाहिए। लोबान काफी महंगा था और इसका उपयोग एक सुखद गंध, एक अच्छी सुगंध बनाने के लिए किया जाता था। मध्य पूर्व में धूप जलाना एक आम बात थी और यह केवल धार्मिक समारोह के लिए ही नहीं था। इसका उपयोग अक्सर कृषि जीवन से जुड़ी गंधों को छिपाने के लिए किया जाता था और कभी कभी स्नान करने के लिए भी। इसलिए कोई पूछ संकटा है कि लोबान को आटे में क्यों मिलाया जाएगा, क्योंकि वास्तव में इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उस समय के मध्य पूर्वी दिमाग के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती। वे अच्छी तरह से जानते थे कि मैंने आपको पिछले सप्ताह क्या बताया था कि वेदी पर जलाए जाने वाले हर प्रकार के प्रसाद में धुआं ही प्राथमिक महत्व का था। परमेश्वर के लिए एक अनुष्ठान के कारण होने वाले सभी धुएं में धूप होने का एक निश्चित गुण होता था। क्यों? क्योंकि उस युग के लोगों के लिए परमेश्वर बहुत दूर रहता था, बादलों में बहुत ऊपर और उससे भी आगे। इसलिए धुआं वातावरण में ऊपर उठता था और अंततः परमेश्वर तक पहुंचता था। जब उसने सुगंध को सूंघा तो उसे यह अच्छा लगा। लोबान डालने से सुगंध और भी अधिक अच्छी हो गई। हम पुराने नियम के बाद के खंडों में, साथ ही नए नियम में, परमेश्वर तक पहुंचने वाली प्रार्थना और जलती हुई धूप के धुएं के बीच समानताएं पाएंगे। इन उपमाओं को बिल्कुल शाब्दिक रूप से लिया जाना चाहिए। आटे में नमक मिलाया जाना था, हर तरह के अन्नबली में नमक मिलाया जाना था, क्योंकि आने वाले हफ्तों में हम अन्नबली के दूसरे प्रकार भी देखेंगे। फिर भी हम पाते हैं कि शहद और खमीर दोनों ही वर्जित हैं। आइए इन तत्वों पर नजर डालें, क्योंकि बाइबल के बाकी हिस्सों, नए और पुराने नियम में, हम किण्व, खमीर, शहद और नमक के संदर्भ देखेंगे और इन चीजों के प्रतीकवाद को बहुत गलत तरीके से समझा गया है और उसका दुरुपयोग किया गया है। सबसे पहले नमक के बारे में बात करते हैं। नमक के इस्तेमाल के व्यावहारिक और आध्यात्मिक दोनों ही निहितार्थ थे। उत्पत्ति में वापस जाने पर हम पाते हैं कि नमक का इस्तेमाल वाचा बनाने के समारोह के हिस्से के रूप में किया जाता है। यह सब कैसे शुरू हुआ? इस पर विद्वानों ने तर्क दिया है जो यीशु से भी पहले से हैं। फिर भी इसके इस्तेमाल और अर्थ के बारे में हाल ही में आम सहमति बनी है। हम इस मुद्दे की तह तक पहुंचने में मदद करने के लिए यहां कुछ इब्रानी वाक्यांशों पर चर्चा करने जा रहे हैं। पद 13 में हमें बताया गया है कि तुम हर अन्न बलि को नमक से सजाना, अपने अन्न बलि में वाचा का नमक न छोड़ना। दरअसल हमें बताया गया है कि सभी बलिदान बलि को नमकीन किया जाना था। वाचा के नमक के लिए इब्रानी वाक्यांश है मेलाच बेरीट एलोहेका। मेलाच नमक है, बेरीट वाचा है और एलोहेका ईश्वर को संदर्भित करता है, क्योंकि यह एलोहिम शब्द का एक रूप है और यह एक ऐसा वाक्यांश है जो वास्तव में एक मुहावरे की तरह है, यानी यह एक इब्रानी अभिव्यक्ति है। यह ईश्वर के प्रति एक बाध्यकारी दायित्व को संदर्भित करता है और एक ऐसा दायित्व जिसमें उस बाध्यकारी दायित्व की याद में नमक का उपयोग किया जाना चाहिए। हम उस बाध्यकारी दायित्व को वाचा कहते हैं। तो नमक क्यों? ऐसा लगता है कि नमक का इस्तेमाल संधि करने और संधि तोड़ने दोनों के लिए मूसा के समय से बहुत पहले से होता आ रहा है। हमारे पास ऐसे रिकॉर्ड हैं जो दिखाते हैं कि अक्सर अगर कोई संधि तोड़ी जाती थी तो अनुशंसित परिणाम यह होता था कि अपराधी पक्ष के खेतों में बड़ी मात्रा में नमक छिड़का जाता था, जिससे वे अनुपयोगी हो जाते थे। हम मेहमानों के आतिथ्य से जुड़े अनुष्ठानों में भी नमक का इस्तेमाल देखते हैं। इसलिए यहां नमक का इस्तेमाल मध्य पूर्व में अनादिकाल से इस्तेमाल किए जाने वाले समझौते करने के एक सुविचारित तत्व का उपयोग करने जैसा प्रतीत होता है। हमारे चर्च जीवन काल में उपदेशों में हमने जो नमक के रूपक उपयोग सुने हैं उनका वास्तव में कोई आधार नहीं है। हमें बस लैव्य व्यवस्था में इस कथन को सच मानने की जरूरत है कि परमेश्वर अपने लोगों इज़राइल को उनके साथ अपनी वाचाओं की बाध्यकारी प्रकृति को समझने में मदद करने के लिए इस प्राचीन प्रथा का इस्तेमाल करता है। और यह भी स्पष्ट किया गया है कि बलिदान में नमक का उपयोग वैकल्पिक नहीं है। वास्तव में परमेश्वर के दृष्टिकोण से जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, यह एक संकेत है कि उपासक परमेश्वर से सहमत है और परमेश्वर की वाचाओं को कायम रखने का इरादा रखता है। इसलिए जब हम बाइबल के बाद के अध्यायों में, जिसमें नया नियम भी शामिल है, नमक के उपयोग के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वह सीधे तौर पर हो या उदाहरण के तौर पर, तो इसका मतलब है कि इसे या तो एक स्थायी और पवित्र वाचा के संकेत के रूप में लिया जाना चाहिए जिसका पालन करने के लिए आप सहमत हैं, या इसका उपयोग नमक को इंगित करने के लिए किया जाता है जो बेकार हो गया है, इसका उपयोग हो चुका है और अब इसका कोई उपयोग नहीं है। नमक कैसे उपयोग हो चुका है और इसलिए अब उपयोगी नहीं है। कांस्य वेदी पर भारी मात्रा में नमक का उपयोग किया जाता था, जिस पर बलि के जानवर के मांस के बड़े टुकड़े रखे जाते थे। आप देखते हैं कि नमक के कई व्यावहारिक उपयोगों में से एक इसका शोषक मूल्य था। बलि के मांस के टुकड़ों पर नमक छिड़का जाता था ताकि वेदी पर रखे जाने से पहले बचा हुआ खून सोख लिया जाए, फिर इसे जमीन पर हिलाया जाता था। भोजन के लिए मांस तैयार करते समय भी आम तौर पर यही प्रक्रिया अपनाई जाती थी। बलि के जानवरों के खून को जानवर से पूरी तरह से निकालकर एक पात्र में भरकर वेदी के किनारों पर छिड़का जाना चाहिए था, लेकिन इसे मांस के साथ जलाया नहीं जाना चाहिए था। मांस से जितना संभव हो सके उतना खून निकाला जाना चाहिए और यह 7 नोआखाइड कानूनों में से एक पर वापस जाता है जो रक्त खाने पर प्रतिबंध लगाता है। याद रखें, पुजारी या उपासक कुछ निर्दिष्ट बलिदानों के साथ बलि दिए गए पशु के मांस में से कुछ खा सकते थे, इसलिए मांस से खून पूरी तरह से निकल जाना चाहिए था और उनके पास ऐसा करने के लिए बाउंटी पेपर टॉवल के रोल नहीं थे। यह नमक के कार्यों में से एक था
और बेशक नमक के पहाड़ होने चाहिए थे जिनका उपयोग वेदी पर खून को सोखने के लिए किया जाता था। प्रतिदिन बलि दी जाने वाले जानवरों की अविश्वसनीय संख्या से और उस बेकार नमक को नष्ट किया जाना आवश्यक था। इसलिए जब इजरायलियों ने कनान में प्रवेश किया और कई इजरायली शहरों और गांवों में रहने लगे, तो उन्होंने खून से लथपथ नमक को फेंक दिया जो अब उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं था, रास्तों और सड़कों पर। इससे यह आदेश पूरा हुआ कि जो भी खून पीतल की वेदी पर नहीं छिड़का गया था उसे पानी की तरह जमीन पर डालना था। इसलिए खून से प्रदूषित यह बेकार नमक रास्ते या सर्क पर वनस्पति को बढ़ने से रोकने के लिए, जमीन को जहरीला करने के उपयोगी उद्देश्य को पूरा करता था।
अब आइए खमीर यीस्ट पर चर्चा करें। यह उन विषयों में से एक है जिस पर बहुत प्रचार किया गया है और बहुत सी पूर्व धारणाएं बोली गई हैं जो फसह पेसाच के दौरान बलिदान और घरेलू भोजन में खमीर के निषेध के आध्यात्मिक अर्थ के बारे में है। वास्तविकता यह है कि बाइबल हमें इसके महत्व के बारे में कोई ठोस व्याख्या नहीं देती है, बल्कि सुसंगत कथन कि खमीर पाप का प्रतिनिधित्व करता है बाइबल में समर्थित नहीं है। यह सबसे अच्छा एक शिक्षित अनुमान है जो योग्यता रखता है।
बाइबल में खमीर का उपयोग हर जगह किया गया है, जबकि खमीर का उपयोग उन बलिदानों में नहीं किया जा सकता जिन्हें जलाया जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसका उपयोग अन्य प्रकार के धार्मिक समारोहों में किया जाता है, जिसमें शोब्रेड की 12 रोटियां शामिल हैं जिन्हें तंबू के अंदर उस पर्दे के पास रखा जाता है जो पवित्रतम स्थान को पवित्र स्थान से अलग करता है। और खमीर का उपयोग इब्रानी खाना पकाने और बेकिंग में पूरी तरह से स्वीकार्य था, सिवाय कुछ विशेष अवसरों के।
खमीर का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता है? इसका एकमात्र वास्तविक उल्लेख फसह के साथ जुड़ा हुआ है और बाइबल में कहा गया है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यह उस दिन की याद दिलाता है जब इसराइल ने मिस्र को जल्दी से छोड़ दिया था और इसलिए अपने साथ तैयार अखमीरी आटा लाया, क्योंकि इसे खमीर उठने और फूलने का समय नहीं था, अन्यथा इसका निषेध एक रहस्य है। लेकिन समझें कि कुछ मामलों में खमीर का उपयोग करने का निषेध और दूसरों में नहीं, यह परंपरा पर आधारित नहीं है, यह बाइबल में ईश्वर द्वारा निर्धारित आदेश है। अब शहद के इस्तेमाल पर रोक के बारे में इब्रानी शब्द जिसका आमतौर पर शहद के रूप में अनुवाद किया जाता है वह है देवाश, और ऐसा माना जाता है कि देवाश का मतलब शहद हो सकता है, लेकिन यह वास्तव में दूसरे मीठा करने वाले तत्वों को संदर्भित करता है जिनमें से सबसे आम बाइबल के समय में खजूर की चीनी या फलों के रस से बना था। वास्तव में इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उन दिनों शहद इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खियों के छत्ते का इस्तेमाल किया जाता था। शिमशोन द्वारा मरे हुए शेर की हड्डियों में छत्ते को खोजने की कहानी ज्यादा आम है, यानी छत्ते और उसमें मौजूद शहद का मिलना पूरी तरह से किस्मत और खुशी की बात थी। मधुमक्खियां पैरों, चट्टानों की दरारों और हां बड़े जानवरों के कंकालों के अवशेषों में इकट्ठा होती थीं। यह ज्यादा स्वाभाविक था और इसलिए शहद वहीं मिलता था, लेकिन शहद मिलना पूरी तरह से संयोग था और इसे बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था। इसलिए जब हम बाइबल में शहद शब्द देखते हैं तो यह न सोचें कि इसका मतलब मधुमक्खियों से मिलने वाला शहद था। दुर्लभतम उदाहरणों को छोड़कर देवाश का तात्पर्य केवल उस चीज से था जो भोजन में मीठा स्वाद जोड़ती है। फिर बलिदान पर शहद का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता था? इस तरह के सबसे प्राचीन बाइबल के आदेशों के साथ हमारी एक समस्या यह है कि इसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इसलिए संदेह करने के बजाय हमें ऐसे नियमों को सामान्य ज्ञान के साथ समझना चाहिए। जो कथन लोगों के लिए सामान्य ज्ञान थे उन्हें स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं थी। आज से 1000 साल बाद इतिहासकार पूछ सकते हैं कि अमेरिकी दोपहर के भोजन में सैंडविच क्यों खाते हैं, और वे शायद यह भी पूछे कि मेरे पास कोई अच्छा जवाब नहीं है क्योंकि मैं किसी आधुनिक उपन्यास या फास्ट फूड विज्ञापन के बारे में नहीं सोच सकता जो यह समझा सके कि सैंडविच खाना क्यों उचित है और सैंडविच खाने का क्या सांस्कृतिक महत्व था और सैंडविच खाने का इतिहास क्या है और क्या सैंडविच खाने के बारे में कुछ प्रतीकात्मक है। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम ऐसा करते हैं। यही हमारी संस्कृति का एक निर्विवाद हिस्सा है जो विकसित हुआ और व्यापक रूप से अपनाया गया। ये कई बाइबल के आदेशों के साथ ऐसा ही है। और शहद या किसी मीठा करने वाले पदार्थ के उपयोग पर प्रतिबंध समझाया नहीं गया है, इसलिए आप शर्त लगा सकते हैं कि उस दिन के लोगों के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी।
अब महान मध्य युग के रब्बी मेमोनाइड्स ने एक ऐसा उत्तर दिया है जो कुछ हद तक सही है, और वह यह है कि हर दूसरी प्राचीन मध्य पूर्वी संस्कृति में वास्तव में शहद का उपयोग किया जाता था। धार्मिक गतिविधियों में, विशेष रूप से देवताओं के लिए बलिदान में, इसकी आवश्यकता होती थी क्योंकि यह बहुत दुर्लभ और मूल्यवान था। इसलिए बलिदान में शहद के उपयोग के खिलाफ इसराइलियों के लिए परमेश्वर का निषेध इसराइल के व्यवहार और अनुष्ठानों को अन्य सभी से अलग करने के लिए था। यह सच है या नहीं, हमें बस आश्चर्य करना होगा। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि जैसे जैसे समय बीतता है मैं अधिक से अधिक देखता हूं कि परमेश्वर अपने अनुयायियों के लिए जो कुछ भी निषिद्ध करते हैं वह केवल इसलिए है क्योंकि जो लोग उनके नहीं हैं वे इसे महत्व देते हैं। और जब हम प्रभु के साथ अपने रास्ते पर चलते हैं तो हमें अपने निर्णय लेने में उस सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए।
तो संक्षेप में, शहद और खमीर परमेश्वर के आदेश के अनुसार बलि की वेदी पर उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन वे परमेश्वर के सामने रखे गए प्रसाद के रूप में उपयुक्त हैं, यानी ऐसे प्रसाद जिन्हें जलाया नहीं जाता, और इसलिए ये निषिद्ध पदार्थ होम बलि से निकलने वाले धुएं में नहीं मिलते। अनाज की भेंट मिंचाह की रस्म इस तरह से होती थी। सबसे पहले उपासक आटा तैयार करता था, फिर वह या तो इसे निर्धारित तरीकों में से किसी एक में पकाता था या इसे बिना पकाए छोड़ देता था। इसके बाद उत्पाद को तंबू, बाद में मंदिर में लाया जाता था और उपस्थित पुजारी को सौंप दिया जाता था। पुजारी मुट्ठी भर अनाज लेता था और उसे पीतल की वेदी पर रखता था जहां उसे आग में जला दिया जाता था। वास्तव में पुजारी द्वारा लिया गया मुट्ठी भर काफी छोटा था। इब्रानी शब्द पद 2 है जिसका आमतौर पर मुट्ठी भर के रूप में अनुवाद किया जाता है, वह है कोमेट्स। और शब्द का अर्थ यह है कि यह न केवल एक छोटा हिस्सा है बल्कि एक बहुत छोटा हिस्सा है। अनाज की भेंट का बचा हुआ हिस्सा पुजारियों को उनके भोजन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता था और उन्हें इसे तंबू के मैदान में खाना होता था, यानी तंबू के आंगन में। इसे एक पवित्र भोजन माना जाता था। संक्षेप में, वे परमेश्वर की उपस्थिति में भोजन कर रहे थे। पद 3 कहता है कि हारून और उसके बेटों को दिया गया यह हिस्सा याजकों को एक कोडेश कोडशिम, एक सबसे पवित्र हिस्सा था, इसलिए केवल एक छोटी सी मात्रा वेदी पर रखी गई, बाकी याजकों को दी गई, लेकिन किसी तरह आटे के बड़े ढेर से ली गई उस छोटी सी मात्रा का प्रतीकात्मक प्रभाव था कि पूरी मात्रा आटे का वह पूरा ढेर जो भोजन के लिए रखा गया था और वेदी पर नहीं रखा गया था पवित्र हो गया। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ शीघ्रता से रोमियों 11 पर जाएं। आइए हम पद 16 पर नजर डालें। रोमियों 11:16 पढ़ें। आपके बाइबल संस्करण के आधार पर यह कुछ इस तरह कहेगा, अब यदि पहले फल के रूप में चढ़ाया गया चल्ला पवित्र है तो पूरी रोटी भी पवित्र है। अन्य संस्करण कह सकते हैं, और यदि आटे का पहला टुकड़ा पवित्र है तो पूरी लोई भी पवित्र है। और अन्य में, यदि आटे का वह भाग जो पहले फल के रूप में चढ़ाया जाता है, पहला फल पवित्र है, वैसे ही पूरा गूंधा हुआ आटा भी पवित्र है। लेव्य व्यवस्था अध्याय 2 का अध्ययन करने के बाद क्या अब आपको यह बात थोड़ी और समझ में आती है? बेशक पौलुस अन्नबली मिनचाह का जिक्र कर रहा है। छल्ला वह आटा है जिसमें तेल मिलाया जाता है और उसे ओवन में पकाया जाता है। लेव्य व्यवस्था हमें बताता है कि इस तरह की रोटी को छल्लाह कहा जाता है। वह छल्लाह का उदाहरण दे रहा है जो बलिदान प्रणाली का अनाज छरहावा है, क्योंकि भीड़ में मौजूद यहूदियों ने इसे अच्छी तरह से समझा था। वे अनाज चढ़ाने की प्रक्रिया और इस अर्थ को अच्छी तरह समझते थे कि वेदी पर आटे का वह छोटा सा हिस्सा चढ़ाने से उसकी पवित्रता पूरी रोटी तक पहुंच जाती है जिसे उपासक और या पुजारी खाते हैं। ये तो तोरह और बलिदान प्रणाली के अध्ययन के महत्व का एक छोटा सा उदाहरण मात्र है। इस ज्ञान के बिना हम कैसे समझ सकते हैं कि पौलुस क्या संप्रेषित करने का प्रयास कर रहा है? लेव्य व्यवस्था 2 पद 14 में हमें मिनचाह का एक विशेष उपयोग दिया गया है। इसका उपयोग फसल उत्सव के दौरान किया जा सकता है। प्रथम फल के पीछे यही विचार है, अर्थात इसे अनाज की पहली फसल से बनाया जाना चाहिए। अब यह केवल एक ही मौसम नहीं था, इसे कई बार किया जा सकता था। उदाहरण के लिए, जब जौ पक गया हो और बाद में गेहूं, जब यह अनाज की भेंट प्रथम फल उत्सव के उद्देश्य से होती थी तो इसे आमतौर पर ओलाह, पशु की होम बलि के साथ संयोजन में नहीं किया जाता था। दूसरे शब्दों में, जब अनाज की भेंट का कारण अनाज की कटाई प्रथम फल का स्मरण करना था तो यह एक अलग बलिदान था और आमतौर पर किसी अन्य प्रकार के बलिदान के साथ नहीं जोड़ा जाता था। और इस मामले में अनाज से सूजी निकालने और फिर उसे पीसकर आटा बनाने के बजाय अनाज को बस आग पर भून दिया जाता था। भुने हुए साबुत अनाज पर फिर जैतून का तेल और लोबान डाला जाता था और इसे पुजारी को पेश किया जाता था, जो फिर थोड़ी मात्रा लेता था और इसे वेदी की आग पर फेंक देता था।
तो लेव्य व्यवस्था में मिनचाह अनाज की भेंट का क्या अर्थ और उद्देश्य है? वास्तव में हमें इस विषय पर बाइबल से बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलती। इस भेंट का सबसे सीधा उद्देश्य पद 2 में व्यक्त किया गया है, यह यहोवा के लिए एक सुगंधित सुगंध है। ओलाह एक जानवर की होम बलि और मिनचाह अनाज की होम बलि के बीच एक सीधा संबंध है और इसका बहुत कुछ यहोवा के लिए सुखद होने के रूप में व्यक्त किया गया है और आनंद धुएं की सुगंधित सुगंध में रहता है।
अब तक हमने देखा है कि मिनचाह ईश्वर को दिया जाने वाला उपहार है। हालांकि यह एक अनैच्छिक उपहार श्रद्धांजलि सर्वशक्तिमान राजा द्वारा निर्धारित और अपेक्षित कुछ है और यह ईश्वर को प्रसन्न करने वाला माना जाता है। इनके साथ साथ यह भी माना जाता है कि उपासक यहोवा के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा करता है और उसकी आज्ञा मानने का इरादा रखता है।